यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 5 फरवरी 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। म्यांमार में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने पर सुरक्षा परिषद की चिंता। गिरफ्तार की गई हस्तियों की रिहाई की मांग। कोविड-19 महामारी की वैक्सीन का टीकाकरण तेजी पर। WHO ने टीकाकरण में असमानता पर जताई चिंता। सीरिया में रासायनिक हथियारों के प्रयोग की शिनाख्त व जिम्मेदारों की जवाबदेही तय किए जाने की पुकार। FGM यानी महिला खतना का खात्मा करने के लिए समाजों के हर स्तर पर एकजुटता की पुकार। और नफरत के माहौल का सामना करने में विश्व बंधुत्व एक मजबूत उपाय। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को जारी प्रेस वक्तव्य में म्यांमार में हाल ही में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद ने साथ ही देश की निर्वाचित हस्तियां आंग सान सू ची और विन मिंत की तत्काल रिहाई का आग्रह किया है। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने म्यांमार के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में प्रयासों को समर्थन जारी रखने की बात कही है। सोमवार को म्यांमार की सेना ने 5 साल के नागरिक प्रशासन पर विराम लगाते हुए सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और देश के शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सैन्य शासन ने सत्ता की बागडोर 1 वर्ष तक अपने हाथों में रखने की घोषणा की है। बुधवार को म्यांमार के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी लेकिन वक्तव्य के मसौदे पर सहमति नहीं बन पाई थी। सुरक्षा परिषद ने जोर देकर कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं को बरकरार रखना होगा, हिंसा से दूर रहना होगा और मानवाधिकारों, बुनियादी आज़ादियों व कानून के राज का पूर्ण सम्मान करना होगा। उससे पहले UN महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता द्वारा रविवार को जारी एक वक्तव्य में म्यांमार में तमाम विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां सेना को स्थानांतरित किए जाने की घोषणा पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। वक्तव्य में कहा गया था कि इन घटनाक्रमों में म्यांमार में लोकतांत्रिक सुधारों को एक गंभीर झटका नजर आता है। UN महासभा के अध्यक्ष वोल्कान बोस्किन ने भी म्यांमार में हालात पर चिंताएं व्यक्त की हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और विधि के शासन की अहमियत को कम करने के प्रयास अस्वीकार्य हैं। उन्होंने भी हिरासत में लिए गए तमाम राजनीतिक नेताओं की तुरंत रिहाई का आह्वान किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के अब तक 10,43,00,000 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 22,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के जितने मामले अब सामने आ रहे हैं उससे कहीं बड़ी संख्या में महामारी की रोकथाम के लिए एक दिन में टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है कि टीकाकरण अभियान अभी अधिकतर साधन संपन्न देशों में ही चल रहा है जिसका दायरा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अफ्रीकी देशों में वैक्सीन की खुराकों की खेप भेजे जाने की तैयारी तेज कर दी है। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के मामले जितनी संख्या में सामने आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन टीकाकरण का 3/4 हिस्सा महज 10 देशों में ही हो रहा है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने जिनीवा में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 130 देशों में 2.5 अरब लोगों को अभी वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिल पाई है। महानिदेशक गेब्रियसिस ने कहा कि ये सभी सरकारों का दायित्व है कि वो अपने लोगों की रक्षा करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीके लगाए जाने के बाद अपनी बाकी आबादी की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है कि वैक्सीनों का वितरण किया जाए ताकि अन्य देश भी ऐसा कर सकें।
All governments have an obligation to protect their own people, but once countries with vaccines have vaccinated their own health workers and older people,
महानिदेशक गेब्रेसिस कह रहे थे कि इसलिए जरूरी है क्योंकि अन्य देशों में जो लोग संक्रमण का सबसे ज्यादा जोखिम झेल रहे हैं उन्हें टीके दिए जाने में देरी से वायरस के अपना रूप बदलने और वैक्सीनों से बच निकलने का रास्ता तैयार होता है। दूसरे शब्दों में अगर हमने वायरस पर हर जगह काबू नहीं पाया तो हम फिर से वहीं पहुंच सकते हैं जहां से हम चले थे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली साझा पहल कोवैक्स के तहत फरवरी महीने में कोविड 19 वैक्सीन की 9 करोड़ खुराकों को अफ्रीकी देशों में भेजे जाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर यह पहली बार होगा जब इतने व्यापक स्तर पर टीकाकरण मुहिम को संचालित किया जाएगा। 9 करोड़ शुरुआती खुराकों के जरिए अफ्रीकी आबादी के 3% हिस्से के टीकाकरण में मदद मिलेगी, जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और ज्यादा संख्या में टीकों की उपलब्धता के साथ वर्ष 2021 के अंत तक 20% अफ्रीकियों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार जिन देशों के पास कोवैक्स पहल के तहत टीके पहुंचने हैं, उन्हें अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यूएन एजेंसी ने जोर देकर कहा है कि एक भी वैक्सीन की खुराक को बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी एक ऐसी पहल है जिसके तहत वैक्सीन के विकास, उत्पादन, वितरण और उसकी उपलब्धता को सुलभ बनाना है।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष निरस्त्रीकरण अधिकारी इजुमी नाकामित्सु ने जोर देकर कहा है कि सीरिया में जिन तत्वों ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है उनकी न केवल निशानदेही की जाए बल्कि उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें जवाबदेह भी ठहराया जाए। यूएन निरस्त्रीकरण मामलों की प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने एक वर्चुअल बैठक में सुरक्षा परिषद को बताया कि इस तरह की ठोस कार्रवाई के बिना हम रासायनिक शस्त्रों के दंड मुक्ति की भावना के साथ प्रयोग को अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि ये परिषद ठोस नेतृत्व दिखाते हुए ये सुनिश्चित करे कि रासायनिक हथियारों का प्रयोग करने में दंड मुक्ति की भावना सहन नहीं की जाएगी। निरस्त्रीकरण प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु प्रस्ताव संख्या 2118 के क्रियान्वयन पर जानकारी मुहैया करा रही थी। इस प्रस्ताव में वर्ष 2013 में इस मुद्दे पर आम सहमति बनी थी कि सीरिया में रासायनिक शस्त्रों के किसी भी तरह के प्रयोग की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी होगी। सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव के माध्यम से अपना ये पक्का इरादा भी जाहिर किया था कि रासायनिक हथियारों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या तत्वों को जवाबदेह ठहराया जाए। निरस्त्रीकरण प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि कोरोना वायरस महामारी ने अलबत्ता सीरिया में रासायनिक शस्त्र निरोधक संगठन की तैनाती को प्रभावित करना जारी रखा हुआ है, फिर भी इस संगठन के तकनीकी सचिवालय ने सीरिया के रासायनिक शस्त्र कार्यक्रम को खत्म करने से संबंधित अपनी गतिविधियां जारी रखी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन के तथ्य एकत्रीकरण मिशन ने सीरिया में रासायनिक हथियारों के प्रयोग के आरोपों से संबंधित तमाम उपलब्ध जानकारी की जांच का सिलसिला जारी रखा हुआ है। साथ ही ये संगठन सीरिया सरकार और रासायनिक शस्त्र कन्वेंशन के अन्य सदस्य देशों व पक्षों के साथ भी संपर्क बनाए हुए है। अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद संबंधी अपराधों के आरोपों में हिरासत में लिए गए एक तिहाई से ज्यादा बंदियों को यातना और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन और यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा साझा रूप से बुधवार को जारी एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
अफगानिस्तान में यूएन मिशन और यूएन मानवाधिकार कार्यालय की यह रिपोर्ट 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि पर आधारित है। रिपोर्ट के लिए 656 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से बात की गई जिन पर सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े अपराधों में शामिल होने का संदेह है या उन पर इस आशय के आरोप लगे हैं और कुछ मामलों में दोष साबित हुए हैं। इन व्यक्तियों को अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 64 हिरासत केंद्रों में रखा गया है। वर्ष 2017-2018 की तुलना में यातना का शिकार होने का दावा करने वाले बंदियों की संख्या में मामूली गिरावट आई है, लेकिन ताज़ा आंकड़े चिंताजनक हैं। जिन व्यक्तियों से बात की गई उनमें से 30% का कहना है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। रिपोर्ट बताती है कि यातना दिए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय और अफगान कानून प्रणाली के तहत प्रतिबंध है और ऐसी घटनाओं को किसी भी तरह के हालात में स्वीकृति नहीं दी जा सकती और ना ही सही ठहराया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बंदियों के लिए प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का पालन कभी कभार ही किया जाता है, मोटे तौर पर ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया जिसमें बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई हो या फिर पूछताछ से पहले वकील उपलब्ध कराए गए हो। ऐसे बंदियों की संख्या बहुत कम थी जिनकी चिकित्सा जांच कराई गई या फिर जिन्हें हिरासत के शुरुआती दिनों में अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति दी गई। करीब 50% बंदियों से कागजात पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाते समय उसमें लिखित ब्यौरा नहीं बताया गया जिससे अभियोजन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आती है। रिपोर्ट के अनुसार प्रक्रिया संबंधी उपाय लागू करने में नाकामी के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय में बंदियों को एकांतवास या बिना किसी संपर्क के हिरासत में रखे जाने के मामले बढ़ रहे हैं। बताया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के असरदार पालन के जरिए यातना दिए जाने के मामलों में कमी लाई जा सकती है, साथ ही इससे आम जनता का सार्वजनिक संस्थाओं, विधि व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और कानून के राज में भरोसा बढ़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष लाखों लड़कियों व महिलाओं को FGM यानी महिला जननांग विकृति के जोखिम से बाहर निकालने के लिए समाज के तमाम क्षेत्रों और स्तरों पर सहयोग व एकजुटता से काम लेने का आह्वान किया है। महिला जननांग विकृति को महिला खतना भी कहा जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण चूंकि अनेक स्कूल बंद हुए हैं और ऐसे कार्यक्रमों को रोकना पड़ा है जिनके तहत इस हानिकारक प्रथा से लड़कियों की रक्षा की जाती है, इसलिए ये आशंकाएं व चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं कि अगले एक दशक के दौरान महिला खतना के लगभग 20 लाख अतिरिक्त मामले हो सकते हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने 6 फरवरी को मनाए जाने वाले महिला खतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में ध्यान दिलाया कि एकजुटता के साथ काम करके हम महिला खतना की प्रथा को वर्ष 2030 तक समाप्त कर सकते हैं। महासचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चूंकि टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई दशक शुरू कर रहा है, तो आइए हम इस दशक को महिला खतना के लिए शून्य बर्दाश्त का दशक बनाएं। ऐसा करने से लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक प्रगति पर अनेक सकारात्मक प्रभाव होंगे। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM, जिसे महिला खतना भी कहा जाता है, एक ऐसी हानिकारक प्रथा है जिसमें महिला जननांग के कुछ बाहरी हिस्से को बिना किसी चिकित्सा कारण के काट दिया जाता है। जिन समाजों या समुदायों में ये प्रथा प्रचलित है वहां इस कृत्य को किसी परंपरागत जानकारी वाले व्यक्ति द्वारा कुंद और अस्वच्छ औजारों के जरिए अंजाम दिया जाता है और पीड़ित को ये अनौपचारिक ऑपरेशन करते समय बेहोश भी नहीं किया जाता। इस प्रथा का शिकार होने वाली लड़कियों और महिलाओं पर इसके गंभीर शारीरिक व मानसिक परिणाम होते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं में दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, यौन संबंधों के दौरान दर्द होना और अन्य यौन बीमारियां होना शामिल हैं। महिला खतना के मानसिक प्रभाव भी होते हैं और बहुत से पीड़ितों में चिंता, अवसाद, खुद को अपूर्ण समझने और हर समय भयभीत महसूस करने जैसे लक्षण शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने कहा है कि जनवरी 2021 एक बेहद अहम दशक 2021-2030 की शुरुआत को परिलक्षित करता है जिसके जरिए टिकाऊ विकास के लिए महासागरों की रक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनेस्को ने बुधवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अगले 10 वर्षों में अहम कार्रवाई को आगे बढ़ाने और महासागरों से उपजती चुनौतियों व अवसरों पर चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूनेस्को ने बुधवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जिसके साथ ही टिकाऊ विकास के लिए महासागर विज्ञान के UN दशक की शुरुआत हो गई। इस दशक का लक्ष्य टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महासागरों से उपजने वाले अवसरों और चुनौतियों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है। वर्ष 2021 को महासागरों के लिए एक सुपर ईयर करार दिया गया है। यूनेस्को के अनुसार ये वर्ष स्वस्थ पृथ्वी के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक संकल्प की शुरुआत को इंगित करता है। बताया गया है कि महासागरों के दशक के जरिए देशों के पास साथ मिलकर काम करने का एक ऐसा अवसर है जो जीवन में एक ही बार आता है। समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप महासागर विज्ञान का लाभ उठाए जाने की योजना है ताकि साझा महासमुद्रों का टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। महासागरों की रक्षा और उनका सतत प्रबंधन, भोजन और आजीविका के लिए और जलवायु व्यवधान व अन्य संबंधित त्रासदियों से निपटने के लिए बेहद अहम है। मानवता को पोषित और जलवायु को नियमित करने में महासागरों की क्षमता को पुनर्बहाल करना एक बड़ी चुनौती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि प्रकृति के साथ समरसता कायम की जानी होगी ताकि एक समृद्ध और न्यायोचित विश्व सुनिश्चित किया जा सके। यूएन एजेंसी की प्रमुख ऑड्री अजोले ने बताया कि कोरोना वायरस से उभरने के बाद जैसे जैसे दुनिया नए हालात में ढल रही है, महामारी के बाद पुनर्बहाली प्रयासों में महासागर विज्ञान की अहम भूमिका होगी। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने किया, जिसमें सभी आयु वर्गों और महाद्वीपों से कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने के रास्तों पर चर्चा हुई।
संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने इस अवसर पर बाल श्रम के खिलाफ संगीत नामक अभियान शुरू किया है। मकसद है बाल श्रम के प्रति जागरूकता लाने के लिए संगीतकारों को एकजुट करना। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए भारत में ILO की नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर दिव्या वर्मा के साथ बातचीत की।
म्यूजिक अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये एक 2013 में लॉन्च किया गया इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में ILO, JM इंटरनेशनल और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ म्यूजिशियन FIM ये एक साथ जुड़े थे और बहुत से नामी गिरामी मशहूर म्यूजिशियंस और संगीत जगत के नामी लोग इसमें जुड़े थे। और इस बार जब ये फिर से लॉन्च किया गया है प्रतियोगिता, जिसमें MACL ने फिर से उसी थीम के तहत नामी गिरामी मशहूर म्यूजिशियंस को जोड़ करके इस बार ये जो कंपटीशन लॉन्च किया है, इसके दो उद्देश्य हैं। एक ये कि म्यूजिक के माध्यम से जागरूकता फैलाएं, लोगों में चाइल्ड लेबर के बारे में बताएं, और जिसका जो भी रोल हो सकता है चाइल्ड लेबर को रोकने में उसको करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो इसका एक ये भी ध्येय है कि बच्चों को म्यूजिक के द्वारा सशक्त किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए, और वो बच्चे जो बाल मजदूरी में जुड़े हुए हैं या वो बच्चे जो वनरेबल हैं बाल मजदूरी में जुड़ने के लिए, उनको एक आवाज मिले जिससे उनकी वो अपना अभिव्यक्ति कर सकें, अपनी बात को आगे रख सकें, और साथ ही एक आर्ट्स एजुकेशन जैसा भी उनको एक मौका मिले कि आर्ट्स एजुकेशन से जुड़े। और इस सबके करने के पीछे मकसद यही है कि एक बाल श्रम मुक्त समाज बनना है। और ये इस साल में जबकि इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के ऊपर कार्य हो रहा है, 2021 को चिन्हित किया गया था कि वो इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर जैसे मनाया जाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इनिशिएटिव और भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि म्यूजिक के माध्यम से म्यूजिशियंस को जोड़ करके उनके माध्यम से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जाए, जिससे कि जो हमारा एक टारगेट है कि 2025 तक चाइल्ड लेबर का एलिमिनेशन हो, उसमें एक वैश्विक तौर पर सब लोग जुड़े।
मशहूर भारतीय संगीतकार AR रहमान भी इस अभियान में संगीत प्रतियोगिता के जज के रूप में जुड़े हैं। भारत में क्या हलचल है इसे लेकर, यहाँ से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है इस कंपटीशन में?
एक बात तो तय है कि जैसे ही AR रहमान जी का नाम आता है, सबको ये समझ में आ जाता है कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है। और ये भी है कि AR रहमान को अगर हम लोग देखें कि वो उस प्रकार के म्यूजिशियन हैं जो कि हर एक चीज से नहीं जुड़ते हैं, वो काफी उनका चुनाव करने का एक अपना ही शैली है। तो उनका इस पूरे कंपटीशन से जुड़ने से इस पूरे कंपटीशन का स्तर और ज्यादा बढ़ गया है।
तो आपने पहले कहा 2021 को बाल मजदूरी दूर करने के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में लक्षित किया गया है, इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं इसके?
इसका मायने ये होता है कि इतने सालों से चाइल्ड लेबर के ऊपर काम हो रहा है, पिछले वर्षों में देखा गया है कि चाइल्ड लेबर के संख्या में गिरावट आई है, लेकिन पिछले कुछ 3-4 सालों में ये भी देखा गया है कि अगर उतना ही अथक प्रयास जो कि चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए किया जा रहा था, अगर उतनी ही जोश से नहीं किया गया तो ये वापस से वही स्थिति बन सकती है जो कि पहले थी। और होता ये भी है कि अगर आप किसी एक थीम को एक किसी वर्ष के रूप में मनाते हैं तो सबको मौका मिलता है उससे जुड़ने का और एक नए जोश के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।
तो इन सभी गतिविधियों में आम लोग किस तरह हिस्सा ले सकते हैं, खासतौर पर बाल श्रम के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर हम सब किस तरह के कदम उठा सकते हैं?
सबसे पहले तो यही बात आएगी कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम बाल श्रम को बढ़ाने ना खुद बढ़ाने दें, ना हमारे पहचान में हमारे आसपास अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस हो रही है तो उसको एडिक्वेटली रिपोर्ट करें। तो सबसे पहली बात है उसके बारे में अपनी खुद की जानकारी बढ़ाएं। उसके बहुत से तौर तरीके हैं, बहुत से उसकी इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए, रिटन मटेरियल देख लीजिए, चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आइसोलेशन में नहीं, सोसाइटी में ही चाइल्ड लेबर है, ऐसे नो टू चाइल्ड लेबर इन वॉट एवर इज बीइंग डन। किसी प्रकार के प्रोडक्ट में चाइल्ड लेबर है कि नहीं, एज अ कंज्यूमर ऑल्सो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम जानने की कोशिश करें कि हमारे पास जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर उसमें चाइल्ड लेबर है, कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस पर आवाज उठाएं, हम उस पर अपनी सोच जाहिर करें ताकि एक प्रेशर बने।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत संकल्प दर्शाए जाने का आह्वान किया है। गुरुवार को पहली बार मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस पर महासचिव ने ये बात कही। यूएन प्रमुख ने इस दिवस पर आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में भेदभाव गहराई से समाया है और असहिष्णुतापूर्ण कृत्य व लोगों के खिलाफ नफरत से प्रेरित अपराध उनके धर्म, आस्था, जातीयता, लिंग और यौन प्रवृत्तियों के कारण हो रहे हैं। उन्होंने इन घिनौनी हरकतों को मानवाधिकारों और यूएन मूल्यों का तिरस्कार करार देते हुए कहा कि सांस्कृतिक विविधता और आस्था की आज़ादी मानवता के समृद्ध ताने बाने का हिस्सा है। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता, समझ और संवाद को बढ़ावा देने का संकल्प लेने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा साझा रूप से पेश प्रस्ताव को दिसंबर 2020 में पारित किया था, जिसमें 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई थी। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में गुरुवार को वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश और मोरक्को फ्रेंच मूल की कार्यकर्ता लतीफा इब्न जियातेन को संयुक्त रूप से मानव बंधुत्व के लिए जायद सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस के उच्च प्रतिनिधि मिगेल एंगेल मोराटिनोस ने कहा कि मानव बंधुत्व दिवस को मनाए जाने की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उनके अनुसार दुनिया को न केवल महामारी के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि नफरत, भेदभाव और नस्लवाद का संक्रामक वायरस भी फैल रहा है। यूएन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नफरत के रोग की असरदार दवा मानव बंधुत्व है, जो कि करुणा, एकजुटता, एकता और आपसी सम्मान को प्रदर्शित करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत है।